रिफत साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियोज में आईं और वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका रुझान लिखने की तरफ किस तरह से हुआ?
मतलब ये कि हर एक यही कहता है कि बचपन से शौक था। बात दरअसल ये है कि मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह एक बीज को अगर अच्छा, मतलब ये कि अच्छी ज़मीन, पानी और हवा और रोशनी मिल जाए तो वो बहुत अच्छी तरह परवान चढ़ता है। तो इसी तरह से बचपन मेरा जो था उसमें माहौल इस तरह का मुझे मिला जिसमें मेरे पापा, मतलब कि उनको उन्होंने एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी बना रखी थी और हमारे अक्सर मुशायरे वगैरह भी हुआ करते थे और बड़े लोग हमारे यहाँ आते थे, ठहरते थे। तो एक मतलब ये कि उस तरह से उस अंदाज में परवरिश हुई कि उसमें एक मतलब कि मुझे इस चीज़ ने एक यूँ समझे कि मिजाज मेरा सेट कर दिया। और लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था, मैंने जो पहली कहानी लिखी थी वो दो तीन कहानियों को जोड़कर लिख दिया था। तो पापा ने कहा था कि इसे लिखना लिखना नहीं कहते, जो खुद से लिखा जाता है जिसमें आप खुद होते हैं वो होती है आपकी
तो ये जो आप
तहरीर।
पहली कहानी की बात कर रहे हैं ये किस उम्र में आपने लिखी थी?
ऐसी कोई मतलब कि मुझे ये याद नहीं कि मैंने कब कलम पकड़ा और कब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मुझे तो यूँ लगता है कि मैं जब पैदा हुई उसके साथ साथ ये अमल भी शुरू हो गया।
रेडियो ने आपकी तरबियत में एक अहम किरदार अदा किया, फिर आप रेडियो के बाद पीटीवी आपने ज्वाइन किया, कुछ उसके बारे में भी बताइएगा।
जी देखिए, रेडियो में मैं बज़्म तलबा में थी और उस ज़माने में आपकी शहनाज अज़ीज़ जो थी वो शहनाज सलीम हुआ करती थी। और ये मैं बहुत ऑनेस्टली इस बात का वो करूँगी कि खाला खैरन का किरदार को जो नाम दिया था वो इन्होंने ही दिया था। तो इस तरह रेडियो की जो बेस मेरा जो पढ़ा है ना, बेसिकली ड्रामे का, वो रेडियो से पढ़ा है। यहाँ की जो मतलब कि ग्रूमिंग जिसे कहेंगे, वो एक आप देखें कि कोई हीरा पड़ा होता है तो उसको तराश खराश की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह ये है कि मुझे पॉलिश मैं वहाँ हुई और बिल्कुल मतलब खाम माल था जिसे मतलब कि जो सूरत अब है सामने इसमें रेडियो बेस है उसका मतलब ये।
तो रेडियो के बाद फिर आपने पीटीवी ज्वाइन किया?
जी हाँ, रेडियो के बाद ये हुआ कि शादी हुई और उसके बाद मतलब कि अप्लाई किया हुआ था दो तीन जगहों पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन ये कि टेलीविज़न की जॉब जो है ज़्यादा मुझे मतलब ये कि इस बात का यकीन था कि ये फील्ड मेरे लिए ज़्यादा अच्छी है।
तो पीटीवी पे आप क्या करती थी?
पीटीवी में मैं एज अ मतलब ये कि डायरेक्टर हूँ वहाँ पे, और एज अ राइटर ये मेरा अपना पैशन है, फर्स्ट पैशन मेरा राइटिंग है।
आपको क्या लगता है पाकिस्तान में बतौर खातून लिखारी अपनी पहचान बनाना या अपना एक रास्ता बनाना एक आसान काम है या मुश्किल है?
देखें, अगर आपको सपोर्ट करने वाले अच्छे मिल जाएं तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ख्वातीन से हमारे यहाँ यही तवक्को रखी जाती है कि बस वो घरदारी के काम करेंगी और अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगी। उसके साथ बहुत अच्छा उनको समझते हैं प्रोफेशन टीचिंग का। ये जो हमारी जॉब है इसमें तो डे एंड नाइट लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें तो शिफ्टें मिलती हैं, हम नाइट्स भी करते हैं। अब मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने ये जॉब शादी के बाद ही की और मेरे मियाँ जो हैं उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया।
इतना वक्त हो गया है आपको काम करते हुए, लिखते हुए, आपने कुछ माशरे के अंदर तब्दीलियां नोट की हैं? आपको लगता है तब से अब के माशरे में कुछ फर्क है कुछ लोगों की पढ़ने की आदत के हवाले से?
देखिए, तब्दीली तो बहुत ज़बरदस्त आई है, क्योंकि अब हम मतलब कि किताबों के दौर से निकल के कंप्यूटर एज में आ गए हैं, बल्कि मतलब कि कंप्यूटर एज के जो बच्चे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन जो कशिश पुरानी जो हमारे ज़माने में थी, किसी चीज़ को सीखने की जस्तजू थी और बहुत लगन के साथ हम आगे बढ़ते थे, इतने शॉर्टकट्स हमारे पास नहीं थे तो उसका अपना मज़ा था। लेकिन यह है कि मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि जब से मैं, जैसे जब हम पहले उस पे थे VTR से VPR, VPR से फिर बीटा कैम, यूमैटिक पे आए, यूमैटिक से बीटा कैम, बीटा कैम से हम मतलब कि अब हम नॉन लीनियर एडिटिंग पे आ गए, तो ये चीज़ें मैं ये समझती हूँ कि इंसान को ज़माने के साथ साथ सीखना भी चाहिए और चलना भी चाहिए। लेकिन जो आप ना कंप्यूटर के साथ लग के और उसे अपने तकिए के नीचे रख कर और जो किताबें पढ़ते पढ़ते जो लिहाफ में छुप के पढ़ना या मतलब ये कि लेटे लेटे पढ़ना, ये चीज़ें आप एंजॉय नहीं कर सकते कंप्यूटर के साथ। उसमें आपको ऑन करना पड़ता है, बड़े सब्र के साथ इंतज़ार करना पड़ता है, और किताब तो आपने झट से खोली, जहाँ दिल चाहा वहाँ कोना मोड़ा और रख दिया एक तरफ, और फिर आपकी एक इमेजिनेटिव मतलबी की वर्ल्ड होती है जिसके अंदर आप अपना दरवाजा खोलते हैं और उस दुनिया में उतर जाते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये इतनी मतलबी के वो हो गई हैं कि आपके अंदर की दुनिया का दरवाजा जैसे बंद सा हो गया है और दूसरा दरवाजा खुल गया है, उससे आप झांक रहे हैं। और हम जब अपनी अम्मी से कहानी सुना करते थे, या जो हम तस्वीरें बनाते थे, या जो हम कहानियां अल्फ लैला की कहानियां जो पढ़ा करते थे, तो ये सारी चिड़ियों की अल्फ लैला पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बहुत खूबसूरत किताबें थी और हमने इतना मतलब अच्छा वक्त गुजारा है। और ये जनरेशन उस चीज की गर्द को भी नहीं पा सकती जो वक्त हमने देखा है ना, जिस तरह से
वो इससे
किताबों के
बहुत
साथ,
मुख्तलिफ
वो
था।
बहुत मुख्तलिफ था और मुझे पसंद भी बहुत है, मतलब
तो आपको लगता है कि उस जमाने की जो नस्ल है, जो आप लिख रही हैं, वो उस जमाने की नस्ल के लोगों के लिए है, या जो आजकल की जमाने के जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं उनकी, वो भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं उससे?
हाँ देखिए, मोहब्बत का जज्बा, क्योंकि गुड एंड ईविल ये हमेशा से है, अच्छाई अच्छाई रहती है, गुडनेस गुडनेस ही रहती है। तो ये खैर और शर की जो जंग है ये तो हमेशा से चल रही है, उसमें आप अपनी इमेजिनेशन के साथ चलते थे लेकिन वो चीज़ नहीं बदली, मतलब मोहब्बत का जज्बा जो है उसकी इंटेंसिटी नहीं बदली, मतलब कि वो उसी तरह से पावरफुल है। जज्बा है मोहब्बत का, अपनी जगह है। रोमांटिक इस ज़माने में भी बच्चे हैं, उस ज़माने में भी हुआ करते थे, वो ज़्यादा रोमांटिसाइज करते थे, ये ज़रा कम करते हैं क्योंकि ये रियलिटी के साथ साथ चलते हैं। तो ये इनकी अकल पहले है और इनका दिल बाद में है, मुझे ये लगता है। और हमारा दिल पहले था, अकल मतलब ये कहीं खो जाती थी
चलें,
तो।
ड्रामे के हवाले से कुछ बात करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि रिवाइवल हुआ है ड्रामे का पाकिस्तान में। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगी एक राइटर के तौर के ऊपर? आप किस तरह से देखती हैं कि जो आपके साथ के लोग लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहे हैं? क्वालिटी का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है?
देखिए, बात दरअसल ये है कि जैसे कुएं के मेंढक को पता नहीं होता ना कि तालाब में कितना पानी है, और तालाब के मेंढक को ये नहीं पता होता कि दरिया में कितना है, और दरिया के मेंढक को ये नहीं पता होता कि तालाब में वो बह जाए मतलब उसमें समंदर में कितना पानी और कितना वसी है। इंसान के अंदर उसकी फितरत है कि वो हमेशा नई चीज़ की तरफ लपकता है, कुछ दिनों में वो चीज़ पुरानी हो जाती है, वो उससे उकता जाता है। अब ये है कि वैरायटी इतनी आ गई है मार्केट में, इतने चैनल्स आ गए हैं, और आप बिलीव करें कि एक ही एक्टर इतने नहीं बड़े जितनी के कहानियां और जितने के चैनल आ गए। तो तनव्वो और वैरायटी तो बहुत ज्यादा आई है, मगर कहानियां भी सब, अब ये भी चल पड़ा है कि भेड़ चाल जिसे कहते हैं, कि अगर एक बदमाश हीरोइन का अगर चल रहा है एक सीजन उसका आया, तो एक चालाक सहेली का सीजन आया, तो अब व्यूअर भी बहुत उकता रहे हैं, बास चीज़ें उनको अट्रैक्ट नहीं कर रही, बास चीज़ें वो जहाँ देखते हैं। अभी जैसे इश्क ममनू आया, टर्की का एक मतलब उन्होंने डब करके लेकर आए, मगर चूंकि वहाँ की लोकेशंस, वहाँ के कैरेक्टर्स, वो सब चीज़ें नई थी तो एकदम से हिट हो गया।
इतना सब कुछ लिखा जा रहा है, इतने चैनल्स आ गए हैं, और 24 घंटे के चैनल का पेट भरने के लिए आपको बहुत मवाद चाहिए जो आप उसके अंदर लिखेंगे। आप क्या कहती हैं, इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो वाकई जेन्युइन राइटर्स, जिन्हें आप कह सकें?
असल में होता ये है, जैसे देखें कभी कभी हम नए फेसेस जैसे लाना चाहते हैं ना कि हम इंट्रोड्यूस कर दें, तो सबसे पहले मार्केटिंग वाले आड़े आते हैं, कहते हैं नहीं भाई ड्रामा तो बिकेगा ही नहीं क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं है। नए मौजूआत की तलाश जो होता है ना, कि आप हर पहलू पे करें। अब माशरती मामलों में बहुत सारी चीज़ों पे हमारे यहाँ लिख रहे हैं, बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं, मगर यह है कि अब क्लिक कौन करेगा? अब
जी
तमाम चैनल्स जो हैं वो इस चक्कर में भी पड़े हुए हैं, एक दो चैनल के अलावा, कि किस तरह से कम बजट में, अब उस कम से कम बजट में राइटर भी अच्छा चाहिए, आर्टिस्ट भी अच्छा चाहिए, और आर्टिस्टों को भी पता चल गया है कि हम इनकी मजबूरी बन गए। वो ऐसा मुंह खोल खोल के डिमांड करते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि पहले जो लागत आती थी ना उसका मतलब कि कई गुना आगे बढ़ गया है।
क्या
तो
राइटर्स
बहुत
के साथ
सारे
भी ये सिचुएशन है कि राइटर्स भी पहले से ज्यादा पैसे लेते हैं?
राइटर्स इतने अभी तक वो नहीं हुए हैं, पता नहीं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि राइटर्स को इतना ज्यादा मतलब, डायरेक्टर ज्यादा लेता है और उससे सबसे ज्यादा तो आर्टिस्ट लेते हैं पैसे हमारे यहाँ। तो अब ये है कि कहानियाँ अडेप्टेशन हो रही हैं, अच्छे नॉवल जो हिट रहे हैं ब्लॉकबस्टर उनको लेकर आ रहे हैं, और फिर उनसे ड्रामाई तश्कील ज्यादातर राइटर्स खुद करती हैं, और मैक्सिमम ख्वातीन, राजेश, शोआ, पाकीज़ा, इनसे कहानियाँ जो हिट रही हैं या नॉवेल, तो नॉवेल्स अब ज्यादा से ज्यादा नॉवेल ख़त्म हो चुके हैं। आपको एक जो आप कह रहे हैं ना कि मौजूआत में अब तनव्वो नहीं है, या
जी
मौजूआत में एक मतलब कि यकसानियत सी आती जा रही है, उसकी वजह भी यही है कि उन्होंने जितने नॉवेल्स से अच्छे अच्छे वो तो ले लेके सबने कर लिए। बाद लोगों ने तो ये तरकीब कर ली है कि एक पूरा पूरा उन्होंने मतलब कि हायर कर लिए हैं 8-10 यंग लड़के लड़कियां, उनको सिचुएशंस
अच्छा।
देख के दे देते हैं और फिर वो मतलब कि अब नाम किए हुए उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कि उन्होंने ये तरीका बना लिया क्योंकि चैनल तकरीबन यूँ समझ लें कि 40 के करीब डिफरेंट चैनल्स हैं, उनमें
जी
से वो जो है मुख्तलिफ चैनल्स के लिए लिखना तो एक इंसान के लिए कितना मुमकिन है कि वो इतना दिमाग लड़ा सके या
बिल्कुल
कितना लिख सकेगा, घोड़े की तरह भी कलम दौड़ाएगा तो कितना दौड़ाएगा।
बिल्कुल सही कह रही
तो
हैं।
इसमें ये भी एक थोड़ी सी मतलब की
लेकिन
चीज
जिस
आ
तरह
रही है।
आपने जिक्र किया कि नॉवेल्स वगैरह कम होते जा रहे हैं इतने सबके ऊपर, तो पहले से ही ड्रामे बन गए, तो इसके अंदर आप मुस्तकबिल क्या देखती हैं? जब ये कहानियां ये प्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो क्या कोई ब्रेन ड्रेन होगा या क्या हो जाएगा?
फिर मुझे ये कि एक थोड़ी सी फ्लक्चुएशन सी आएगी, जैसे बिजली जाने से पहले एक झपकी सी आती है ना, कुछ ऐसा होगा इसलिए कि कितने मौजूआत आप लेंगे मतलब है ना, क्योंकि पहले एक चैनल था, एक कहानी के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी में आप गैप होता था।
जी
अब वो है कि आपके पास लिखने वाले उस वक्त 100 थे और चैनल एक था, अब चैनल 100 हैं और लिखने वाले अगर 200 भी हैं तो दो दो डिवाइड होंगे ना एक एक पे,
हाँ
तो अगर एक रोटी हो खाने वाले 10 हो तो उसके बाद आप मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं ना कि मुफलिसी एतबार खोती है। अब वहां पे अखलाकियात भी सुकड़ जाती है, सारी चीजें अपने डिक्लाइन की तरफ चली जाती है ना, तो उसमें यह है कि आपको कहानी मतलब कि कलम चबा चबा के तो नहीं लिखा जा सकता, यह आपके अंदर से होती है।
आप किस्सा लिखती हैं जब आप पे आमद होती है या आप अपने आप को फोर्स करके लिखती हैं?
कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपको बिल्कुल लिखना नहीं आता, एक डेड लॉक लग जाता है आपके जहन में, तो उस वक्त मुझसे बिल्कुल नहीं लिखा जाता। मैं कोशिश करके बैठती भी हूँ तो मैं ऐसे जैसे मेरा दम घुटने लगता है, मैं उठ जाती हूँ, तो मैं हैरान होती हूँ लोगों पे जो कंटिन्यूस लिखते हैं और बहुत लिखते हैं। तो अभी तक तो मेरा यही है कि एक प्रोजेक्ट पे मैंने एक वक्त में काम किया है, दो तीन कश्तियों में सवार होने में ना आप बीच में पानी में गिर जाते हैं, कुछ नहीं कर
बिल्कुल
सकते, ना
बिल्कुल
इधर के
ठीक है,
रहते ना उधर के रहते।
सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया रिफत हुमायूं साहिबा कि आप इधर हमारे स्टूडियोज में आई।
आपका, व्यूए का, सबका बहुत शुक्रिया।